ओम शांति। बाबा ने अलग अलग मुरलियों में कई बार इशारा दिया कि अल्टीमेट क्या है। एक मुरली में बाबा ने कहा, सब मुरलियों का सार बेहद है। फिर एक मुरली में बाबा ने कहा, और ये रिवाइज कोर्स की मुरली में भी सैटरडे को कहा, स्मृति है। बाबा आकर हमारी स्मृति को, कॉन्शियसनेस को, चेतना को एक्टिवेट कर रहा है। हमारी आत्मा में सब कुछ है, क्योंकि हम आत्माएं वहां से आई हैं, परमधाम, शांति धाम, निराकारी दुनिया, लैंड ऑफ साइलेंस, स्वीट होम। वहां पर हम आत्माएं रहती थी, वहां से पार्ट बजाने नीचे उतरी। हर आत्मा अपना अपना पार्ट के अनुसार नीचे उतरती है और अपना पार्ट प्ले करती है। इसीलिए अगर मैं कहूं लाइफ का अर्थ क्या, LIFE, लाइफ का अर्थ है LI, लुक इनसाइड, FE, फायर एक्सटर्नली। इसका अर्थ है अपने अंदर देखो, अपने अंदर देखो और फिर बाहर का मैच खेलो। बिना अंदर देखे बाहर का मैच खेल नहीं सकते। और जब कभी भी कोई आत्मा ऐसा करती है, प्रॉब्लम में आती है। दूसरा अर्थ है LIFE, लव इनसाइड, फोकस एक्सटर्नली। इसका अर्थ है पहले अपने को प्यार करो और बाहर एकाग्र होकर मैच को खेलो। ये लाइफ पूरा गेम ही है। अगर इंग्लिश में कहूं, इट इज ए इटर्नल डांस ऑफ कॉन्शियसनेस। ये पूरा लाइफ गेम ही है चेतना का, जो कि अनादि है। कॉन्शियसनेस का अर्थ हुआ चेतना का अनादि डांस है, वो चलता रहता है, क्योंकि हम वहां अनादि से आए हैं। और अगर अनादि को देखें, जो बाबा ने मुरली में कहा रिवाइज कोर्स में, अब तुम्हें बाप समान बनना है। बाप समान बनने का अर्थ क्या हुआ? पहला, परमधाम क्या है? वहां पर हर आत्माएं अपने अपने एरिया में, सेक्शन में लगी हुई हैं, फिक्स है। वहां पर कोई एक्टिविटी नहीं है। एक्टिविटी यहां पर है, टॉकी वर्ल्ड यहां पर है, वहां कोई एक्टिविटी नहीं है। जो जहां पर है वो वहीं पर है। उसको जैसे ही संकल्प वहां पर उस आत्मा में आता है ड्रामा अनुसार, वो नीचे उतरती है अपना गेम खेलने, सत्युग से त्रेता से। अब आप देखें और हम सभी देखें कि कैसा वंडरफुल गेम है, कैसे संकल्प आ जाता है और ऑटोमेटिक नीचे आते हैं, कितना ऑर्गेनाइज सिस्टम है परमधाम। इसीलिए कहा जाता है परमधाम एक एनर्जी का, एटॉमिक एनर्जी से भी ऊपर का एक एरिया है। और छोटी सी आत्मा में कितना अच्छी तरह पार्ट भरा हुआ है, एक चिप है उसमें पूरा पार्ट भरा हुआ है। सत्युग त्रेता भी एटॉमिक एनर्जी का प्रोडक्ट है। वहां भी हर चीज ऑटोमेटिक होती रहती है, वहां भी कोई किसी को कुछ कहता नहीं, अपने आप होता है, संकल्पों से होता रहता है। वहां पर संकल्प भी नहीं है, एक एनर्जी चलती रहती है। आत्मा भी एक एनर्जी है। अगर मैं कहूं ज्ञान का सबसे गहरा सब्जेक्ट जो मुझे लगा एज ए डॉक्टर, पहला लेसन है, क्योंकि पहला लेसन क्लियर है तो बाकी सब क्लियर है। पहले में गहराई में नहीं गए हैं तो अभी भी हमारी मैच्योरिटी समझ हमें प्राप्त करनी है। उस छोटी सी आत्मा में हर चीज स्क्रिप्ट लिखा हुआ है, इसीलिए वो करा रहा है, मैं कर रहा हूं। ये एनर्जी पूरे शरीर को भी चला रही है, ब्रेन के द्वारा, मस्तिष्क के द्वारा, नर्वस सिस्टम के द्वारा, एंडोक्राइन के द्वारा जिसको कहा जाता है, न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम से बॉडी चल रही है। हमारा हर संकल्प पूरे विश्व में जा रहा है, वाइब्रेट कर रहा है। इसीलिए बाबा ने शुरू से कहा ऐसा समय आएगा कि जहां वाणी का उपयोग कम होता जाएगा, पूरा कम्युनिकेशन संकल्पों से होगा। एक मुरली में कहा नैनों की भाषा, भावना की भाषा और संकल्पों की भाषा। नयन भी बोलते हैं, आंख भी बोलते हैं, भावना भी बोलती है, फील करते हैं, पर उससे ऊपर है थॉट्स, संकल्प। तो बाबा ने कहा आने वाला समय ऐसा होगा जहां कुछ काम नहीं करेगा, वायरलेस, वॉइसलेस ही हमारा वायरलेस काम करेगा। साइलेंस का अर्थ ही है जो वो अनादि घर की अनादि परमात्मा की जो वाइब्रेशन है वो हम यहां पर पृथ्वी पर लोगों को दें। शरीर में जब आत्मा आती है तो शरीर की इंद्रियों द्वारा कार्य करती है। आत्मा में मन बुद्धि संस्कार है और शरीर के द्वारा पूरा काम करती है, शरीर की इंद्रियों के द्वारा। इसीलिए आप देखोगे कि इस एरिया में पूरा पैनल है, हेड एंड नेक। ये एरिया को देखें तो यहां तक मेजर हमारा कंट्रोल पैनल है। आत्मा है, आंख है, कान है, नाक है, मुंह है, हमारी मेजर इंद्रियां यहां पर है। और यही इंफॉर्मेशन लेकर अंदर भेजती रहती है, देख रहा हूं, सुन रहा हूं, फील कर रहा हूं, इंफॉर्मेशन अंदर जा रही है और ब्रेन के द्वारा आत्मा उसको परसीव कर रही है। बोलना एक मेजर आत्मा का काम है, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में कम्युनिकेशन का आधार ही है बोलना। और इसी पर बाहर के कॉरपोरेट एरिया में, कंपनीज में लोगों को सिखाया जाता है पर्सनालिटी डेवलपमेंट में कम्युनिकेशन कैसे करें। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को देखना है कि ये ऑर्गेनाइजेशन ठीक रीति काम कर रहा है कि नहीं, चाहे हॉस्पिटल हो, चाहे हमारा ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, उसमें सबसे टॉप रहता है 100 नंबर कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का अर्थ है कि कैसे लोग एक दूसरे से शब्दों का ट्रांसमिट कर रहे हैं, समझ रहे हैं, बोल रहे हैं और समझ रहे हैं। मेरे को भी अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन को देखना है तो मैं पहला देखूंगा कि यहां कैसा कम्युनिकेशन है। जो लीडर बोल रहा है उसको लोग कैसे ले रहे हैं, समझ रहे हैं। और अगर ये कम्युनिकेशन क्लियर नहीं है, स्पष्ट नहीं है, तो बड़े बड़े प्रॉब्लम हम देखते हैं दुनिया में आते हैं। कुछ भी गलत बोल दिया तो बड़े बड़े प्रॉब्लम आ जाते हैं, क्योंकि कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट खेल है। अब यहां बाबा धीरे धीरे सिखा रहा है साइलेंस का अर्थ क्या। धीरे धीरे हमें आत्मा जो उसकी शक्तियां हैं उसको बढ़ाना है और जो शरीर की कर्म इंद्रियां हैं उसका यूज कम करना है। एक साइलेंस वहां का है परमधाम का, जहां जीरो एक्टिविटी है। बाबा इसलिए कह रहा है कि तुम्हें वहां जाना है, जिसको जितना टाइम अपने सेक्शन में रहना पड़ेगा वो उसका पार्ट है, वो रहना पड़ेगा। और वहां जब रहते हैं जीरो रहना पड़ेगा, न इधर देखना है, न इधर देखना है, न ऊपर देखना है, लटकना है। बाप समान बनने का अर्थ ही है कि पहले मेरे में वो अनादि साइलेंस है कि नहीं। दूसरा हम देखते हैं जब बाप आता है ब्रह्मा बाबा के तन में आता था, फिर दादी के तन में आया, जो हम सभी ने देखा, वो आता है, जाता है, चला जाता है, रहता नहीं है। टेम्पररी आता है और चला जाता है, यानी उसमें समेटने की शक्ति, डिटैचमेंट की शक्ति इतनी है, आया और गया। आना और जाना हमारा भी नेचुरल हो गया है कि नहीं? जिस समय शरीर का, कर्म इंद्रियों का सहारा लेना है, लिया और गया। पहले हम कहते थे मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं। अब हम क्या कहते हैं, वो पुराना हो गया। कॉमेंट्रीज में भी कराते थे मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं। अब वो, अब क्या हो गया, मैं आत्मा हूं। इसका उल्लेख करते नहीं अब, ये मैं ज्योति बिंदु हूं और वहां से आई। इसीलिए बाबा ने फिर से स्वरूपों का अभ्यास कराया कि इतनी अच्छी प्रैक्टिस हो जाए, जब इस वस्त्र का यूज करना है किया और फिर गया। शरीर में आते हैं तो आत्मा में 7 गुण होते हैं और उसमें एक गुण होता है शांति का। अब शांति और साइलेंस में क्या फर्क है? शांति तब है जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन है पीस। पीस तब है जब शरीर में आत्मा काम कर रही है, तब हम कहते हैं मुझे शांति चाहिए। साइलेंस तब है कि जब इससे भी ऊपर मैं परमधाम में हूं, वहां बोलना नहीं पड़ता, क्योंकि वो मेरा अनादि कैरेक्टर है, इटर्नल कैरेक्टर, इटर्निटी है, बेहद है। वो साइलेंस का अनुभव मैं करता हूं कि नहीं? क्योंकि साइलेंस में शक्ति है, पावर है। जितने भी मास्टर्स रहे, अगर उन हम देखें, उनमें उस पावर के कारण ही वो फेमस हुए। चाहे लॉर्ड गौतम बुद्ध, महावीरा, बैठ गए 10 साल, बैठ गए 15 साल, बैठ गए, बैठ ही गए, उनकी पूरी आत्मा उसमें जैसे मर्ज हो जाती थी। अब वही कैरेक्टर मेरे को अपने में डेवलप करना है, क्योंकि जब साइलेंस होगा तो मैं निर्णय अच्छा ले पाऊंगा। डिसीशन पावर तभी आता है जब मैं साइलेंस में हूं। हम भी देखें, अगर यहां बहुत हलचल है आत्मा में, पर्टिकुलरली मन में संकल्प चल रहे हैं, तो शरीर में भी हलचल आती है। इसीलिए बीमारी भी तब होती है जब हम बहुत सोच रहे हैं, ओवर थिंकिंग, नहीं सोच रहे हैं, हम अपनी फीलिंग्स को, भावनाओं को दबा रहे हैं, जिसको मैं कहता हूं सॉफ्टवेयर। हमारे अंदर एक सॉफ्टवेयर है MIS, माइंड इंटेलेक्ट सबकॉन्शियस, मन बुद्धि संस्कार। MIS को अगर कन्वर्ट करूं तो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम हमारे ब्रेन के द्वारा काम कर रहा है। इसको दूसरी लैंग्वेज में कहूं जो मैं यूज करता हूं, हमारा सॉफ्टवेयर है TEAM। टी का अर्थ है थॉट्स, ई का अर्थ है इमोशन, ए का अर्थ है एटीट्यूड, एम का अर्थ है मेमोरी। हमारे संकल्प, भावनाएं, दृष्टिकोण और हमारी संस्कार या मेमोरी डाटा, ये चारों काम करते रहते हैं इस आत्मा में, और वही इंफॉर्मेशन हमारे शरीर में चलती रहती है। जब मेरे को डर लगता है तो हार्ट बीट बढ़ जाएगी, सांस ऊपर नीचे होगी, घबराहट आएगी, चिंता आएगी, सब पैरामीटर ऊपर नीचे चलेंगे। लास्ट 8-9 महीने में भी देखा, जिनको प्रॉब्लम आए, पर जिनमें डर ज्यादा था उनको प्रॉब्लम ज्यादा आए, फियर। और जब फियर ज्यादा रहता है तो ब्लड यहां नहीं रहता, यहां नहीं रहता, ब्लड हमारे दोनों पांव में आ जाता है। ब्लड कहां चाहिए मेरे को, यहां या यहां? क्योंकि शरीर की हीलिंग, शरीर ठीक तब होता है जब हमारी आते इंटेस्टाइन और दूसरे पार्ट अच्छी तरह का काम कर रहे हैं, जिसको कहा गया इम्यूनिटी। और हमने देखा 9 महीने में इम्यूनिटी का गेम बहुत चला, लोग ज्यादातर बातें क्या कर रहे थे, इम्यूनिटी इम्यूनिटी अभी तक चल रही है। एक तो होती है फिजिकल इम्यूनिटी, शारीरिक इम्यूनिटी, व्हाइट ब्लड सेल, स्प्लीन, थायमस, बोन मैरो, आते, स्किन, लंग्स, सिलाइवा, ये हमारी इम्यूनिटी है। लोगों ने कहा ये लो ये लो ये लो ये लो, अपनी इम्यूनिटी को ठीक रखो। अगर इम्यूनिटी ठीक होगी तो वायरस या बैक्टीरिया या कोई भी बीमारी नहीं होगी। कोई भी बीमारी होने का कारण होता है जब मेरी इम्यूनिटी लो हो गई, इवन कैंसर भी, जिसका मैं उसका कारण लो इम्यूनिटी। इम्यूनिटी केवल फिजिकल नहीं रहती, स्पिरिचुअल इम्यूनिटी भी रहती है। स्पिरिचुअल इम्यूनिटी का अर्थ ही है TAM, थॉट्स, इमोशन, एटीट्यूड, मेमोरी। मेरे में तनाव ज्यादा है, डिप्रेशन है, चिंताएं हैं, बहुत जल्दी जल्दी रिएक्ट करता हूं, अपसेट होता हूं, इरिटेट होता हूं, तो मेरे व्हाइट ब्लड सेल और मेरी इम्यूनिटी असर डालती है। इसीलिए कहा गया हमारी आंतें GIT सेकंड ब्रेन है। एक ब्रेन यहां है, एक ब्रेन यहां है। मैं आपको लेटेस्ट रिसर्च भी बता रहा हूं, जो लेक्चर अभी मैंने मेडिकल उसका लिया था, पॉजिटिव इमोशन की टू वेलनेस, उसी का थोड़ा वो भी बता रहा हूं कि कैसे हमारी भावनाएं, फीलिंग, संकल्प हमारे शरीर को असर करती है, और हमारी आतें सेकंड ब्रेन है। जो यहां पर होता है वो यहां हमारी आंतों में भी होता है। इसीलिए सबसे ज्यादा मेडिकल प्रैक्टिस दवाइयां आंतों की रहती है, GIT, अल्सर, एसिडिटी, कई तरह की दवाइयां इसकी रहती है मेजर, क्योंकि आंतें जल्दी असर करती है, सेंसिटिव है। अब हमें जितना नेचुरल साइलेंस आता जाएगा उतना शरीर का रोग प्रतिरोधक शक्ति अच्छी होगी। क्योंकि ये इंफॉर्मेशन यहाँ से ब्रेन के द्वारा कम से कम जाएगी, जितनी कम जाएगी उतना शरीर स्वस्थ होगा। इसीलिए पावर ऑफ साइलेंस का अर्थ ही है, पहला खुद के ऊपर मेरी हेल्थ अच्छी होगी। और बाबा ने दो तीन मुरलियों में कहा, साइलेंस से कई बीमारियों को ठीक कर सकते हो। उसका लॉजिकल एक्सप्लेनेशन यही है कि शरीर की एक्टिविटी, हार्मोन, नर्वस सिस्टम एक रिदम पर काम करेंगे। शरीर एक रिदम पर काम करता है, ब्रेन में भी वेव्स चलती हैं। जितनी स्लो वेव्स चलेंगी अल्फा थीटा, उतना हमारी ब्रीदिंग, हार्ट बीट, शरीर का मेटाबॉलिज्म अच्छा होगा। जितना हम टक 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 करेंगे, शरीर का डिस्ट्रक्शन ज्यादा होगा और वही बीमारी का कारण है। इसीलिए 9 महीनों में कई भाई बहनों ने मेरे को बताया, अब हमने सीखा क्या करना है और बाबा क्या कह रहा है। अभी तक हमने सीखा ही नहीं था, भाग रहे थे। सेवा भी क्या करना है, कैसे करना है, एक रेस हो गई थी। और उस रेस के कारण हमारा शरीर स्टेरॉइड हार्मोन छोड़ रहा था, किडनी के ऊपर एड्रेनल ग्लैंड है, छोड़ता रहता है। जैसे ही मैं भागा, रिएक्ट किया, टक 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 टक। दादी जान की हमेशा कहती थी, महारथी और घोड़े में क्या फर्क है। घोड़ा क्या करता, भागता रहता, टक 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 टक, मैंने ये किया ये किया ये किया, नाम मान शान ये वो, अपने को दिखाने की कोशिश करता है, क्रेडिट लेने का नेचर, ह्यूमन सोल का एक कैरेक्टर है कि मेरा क्रेडिट हो, मैंने किया। और महारथी क्या करेगा, धीरे हाथी सवार धीरे। इसीलिए बाबा हर मुरली में कई, अब कल भी कहा, नब्ज देखकर ज्ञान दो। क्या क्यों बोला नब्ज देखकर, जब आपको परखने की शक्ति आ जाएगी तब आपको पता लगेगा मुझे कितना ज्ञान देना है, कितना बोलना है। साइलेंस का अर्थ क्या हुआ, मीठा बोलो, धीरे बोलो और उतना ही बोलो जितना जरूरत है। अगर कम्युनिकेशन करना है एक वर्ड में करो। हम क्या करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं, उसी चीज को 10 बार रिपीट करेंगे। कल आना है, इतने बजे आना है, इतना करना है, तुझे करना ही है, फिर रिपीट। तो वो क्या होता है, ब्रेन पूरा हेवी हो जाता है। मुझे याद है ऑनरेबल अब्दुल कलाम जी का एक वर्षन जो मैंने किताब में भी दिया, जब वो 9 साल के थे, वो पेड़ को पकड़े हुए थे, पेड़ पर चढ़े हुए थे, एक डाली को पकड़े थे। उनकी छोटी कजिन मार्था वो भी नीचे पेड़ पर लटकी हुई थी। हवा तेज हो गई, तूफान तेज हुआ, हवा आने लगी, पेड़ हिलने लगा। अब्दुल कलाम जी के फादर ने कहा, होल्ड ऑन, पकड़ के रखना। लड़की की मदर ने कहा, देखना गिरना नहीं। लड़की गिर पड़ी। क्यों गिरी बताओ। इंस्ट्रक्शन उनके फादर ने कहा, होल्ड ऑन, पकड़ के रखना। आत्मा से ब्रेन, ब्रेन से अपर लिम में गया इंस्ट्रक्शन, पकड़ के रखना। अब लड़की की मदर ने क्या कहा, देखना गिनना नहीं तो ब्रेन क्या हो गया, कंफ्यूज हो गया। करना क्या है, पकड़ना है कि गिरना है? तो ब्रेन पहले गिर गया फिर पकड़ूंगा। तो हमारी भी ज्यादातर इंस्ट्रक्शन क्या होती है, रिपीटेड होती है। नेगेटिव इंस्ट्रक्शन को भी हम बार बार देते हैं, तो वो नेगेटिव इंस्ट्रक्शन भी ह्यूमन माइंड में अंदर चली जाती है। जितनी भी स्टोरीज हमने पढ़ी बचपन से, बोला गया इस कमरे में मत जाना, वो उस कमरे में गया ही। इंस्ट्रक्शन मिनिमम हो, पॉजिटिव हो, पावरफुल हो। इस माइंड से भी जब मेडिटेशन करना है, इंस्ट्रक्शन पॉजिटिव हो, प्रेजेंट में हो, शॉर्ट हो। मुझे याद आ रहा है बड़ी दादी का जब दूसरा अव्यक्त मिलन था दादी के थ्रू तन में, किसी ने पूछा था कैसे सेवा करनी है, तो दादी ने कहा था हर जगह का प्रॉब्लम अलग अलग होता है, जो कल भी आया कि हर जगह का प्रॉब्लम अलग होता है, हर व्यक्ति अलग होता है, उसको समझकर सेवा करनी है। दूसरा दादी ने कहा कमेंट्री शॉर्ट में होना चाहिए, उसको देखकर मेरे को भी समझ में आया कमेंट्री एक मिनट दो मिनट, जितनी शॉर्ट में होगी उतना ये हमारा माइंड बुद्धि परसीव करेगा। और एक ही इंस्ट्रक्शन देना है हमारी आत्मा को, अगर मुझे प्यार चाहिए तो मैं प्यार स्वरूप हूं। बहुत चीजें इसको देंगे कि मैं शक्ति स्वरूप हूं, पवित्र स्वरूप हूं, आनंद स्वरूप हूं, इसको चाहिए क्या? तो इसीलिए कंफ्यूजन आता। कल भी एक लेडी नीचे मिली वॉक करते हुए, बोली मेरा सिर दर्द हो जाता जब मैं योग लगाती हूं। निकला वही कि कहीं ना कहीं वो खुद को हेवी कर रही थी। योग का अर्थ ही है कनेक्टिविटी, जोड़, इजी, सहज। जितना इजी होंगे, सिंपल होंगे, जितना हम उस अनादि स्वरूप में टिकेंगे उतना इजी जाएगा। क्योंकि हमें पता है आत्मा में वो जेनेटिक डला हुआ है, आत्मा में घर डला हुआ है। जैसे मेरे को मालूम है मेरे को कहाँ जाना है, वो मेरा प्रोग्रामिंग किया हुआ है। ऐसे ही हर आत्मा में ये प्रोग्रामिंग किया हुआ है, कहाँ जाना है, मेरा घर कहाँ है। मेरे को बार बार नहीं बोलना पड़ेगा मैं परमधाम में जाना है, मैं आत्मा हूं। मैं हूं ही आत्मा, हूं ही आत्मा। तो जब हम उस अनादि नेचुरल स्वरूप में अनुभव करेंगे तो वो हमारा कैरेक्टर बन जाएगा। जो सैटरडे की मुरली में कहा स्वरूप का अनुभव करो। हम सुनते बहुत है पर उसका अनुभव करना है। जो कैरेक्टर मेरे को लगता है मेरे में कम है उसका अनुभव करूं। क्योंकि बाबा ने कहा सबसे बड़ी शक्ति अनुभव की शक्ति है। एक मुरली में देख रहा था क्योंकि एक टॉपिक मुझे लेना था नष्ट मोह स्मृति लब्धा, उस मुरली में बाबा ने कहा दिव्य नेत्र है, डिवाइन इंसाइट है, दिव्य चक्षु है, पर उससे भी बड़ा अनुभव का नेत्र है। धीरे धीरे मेरी प्रैक्टिस इतनी हो जाए अपने पुरुषार्थ की कि मैं अनुभव की शक्ति से अपनी बिंदु स्वरूप को, बिंदु परमात्मा को और घर को देख रहा हूं, फील कर रहा हूं, कहीं भी हूं, कार्य कर रहा हूं, जॉब कर रहा हूं, घर पे हूं, कहीं भी हूं, उस अनुभव से मैं समझ रहा हूं मैं बिंदु, वो बिंदु को फील कर रहा हूं। उसको ही कहते हैं ज्ञान की मैच्योरिटी। और अनुभव वाला कभी भी धोखा नहीं खाता, क्योंकि उसमें कॉन्फिडेंस आ गया, मैच्योरिटी आ गई, उसमें डर नहीं आएगा, क्योंकि उसको पता है कि बाबा मेरे साथ चल रहा है और बाबा ने सब कहा है, हर चीज क्लियर करी है, हर काम तुम्हारा हुआ ही पड़ा है। पहले मैं भी सोचता था कुछ करें, फिर सोचते थे, फिर जब एक मुरली में पड़ा हुआ ही पड़ा है, होना ही है, तो वो जो संकल्प विकल्प चलते थे खत्म हो गए, हुआ ही पड़ा है। अभी भी हम आ रहे थे ऊपर, ट्रैफिक था थोड़ा, ग्लोबल भी जाना था, टाइम भाग रहा था, पर फिर सेकंड थॉट आया, हुआ ही पड़ा है, मैं पहुंच ही गया। हर काम अनादि हुआ ही पड़ा है, तू मत अपने सिर पर ले। हम क्या करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी अपने सिर पर ले लेते हैं, तो जो अनादि कैरेक्टर है साइलेंस का खत्म हो जाता है। आत्मा में है, आत्मा में ऑलरेडी है, डिसीशन लेना है, परखना है, सब ये पावर हमारे में है। साइलेंस से हम कहीं भी पहुंच सकते हैं, साइलेंस से हम किसी में भी कनेक्ट करके उसको ठीक कर सकते हैं, उसके दुख को दूर कर सकते हैं। ये बाबा ने सब कहा कि आने वाला ऐसा समय होगा तुम्हें समय ही नहीं मिलेगा, जैसे ही साइलेंस में जाओगे कनेक्ट हो गए और फिर उस आत्मा को पूरे वर्ल्ड से कनेक्ट होगा, तभी बाबा ने कहा विश्व कल्याणकारी। जब हद की जिम्मेवारी सिर पर लेकर चलोगे तो स्ट्रेस रहेगा ही रहेगा। यहां पर मेरे को एक बाबा का सेंटेंस बड़ा अच्छा लगा और शुरू से अच्छा लगा है मेरे को, एक शब्द बेहद। बेहद का क्या अर्थ है? अनलिमिटेड। इंग्लिश शब्द बहुत अच्छा है, अनलिमिटेड। जैसे ही मैं आत्मा अनलिमिटेड हूं, आकाश पृथ्वी परमधाम पूरे विश्व की 7.52 बिलियन से भी ज्यादा आत्माओं से कनेक्ट हो गया, क्योंकि मैं विश्व का महाराजन हूं, मुझे सबको देना है, मैं हद में नहीं हूं, सत्युग त्रेता तक नहीं हूं, उसके बाद तक मेरे को देते रहना है, जो आत्मा आए खुश होकर जाए, कनेक्ट हो जाऊं। हद यानी ये मेरा 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 तो करके हम चिपक जाते हैं, अटैच हो जाते हैं। और वही प्रॉब्लम है, जैसे ही मैंने उससे अलग हो गया तो बाबा ने कहा बेहद की जिम्मेवारी तुम्हारी हद की जिम्मेवारी को भी पूरा कर देती है, और ये मैं रिजल्ट देख रहा हूं। जैसे ही बेहद में टिक गए तो हद अपने आप होता रहता, अपने आप होगा। ये सीक्रेट है ड्रामा का, कि जैसे ही मैं पूरा वर्ल्ड में कनेक्ट हो गया, ऊपर कनेक्ट हो गया, अपने से कनेक्ट हो गया, तो सब काम अपने आप होंगे। आपके सामने वो व्यक्ति आ जाएगा जिससे काम था, जिसको कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे भी काफी लेक्चर चलते रहते हैं। वो क्या है लॉ ऑफ अट्रैक्शन? हमारे साथ जो भी हो रहा है उसके तीन कारण हैं। एक तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, कर्मा है, ड्रामा है। तीनों चलते रहते हैं, उसी के अनुसार सब चलता है। पर जब मैं हद को पकड़ता हूं तो दुख तकलीफ होती है, और जब मैं हद से अलग हो जाता हूं तो बेहद में चला जाता हूं। एक पिताजी खेत में काम कर रहे थे, उन्होंने घड़ी पहन रखी थी, पहले की बड़ी घड़ी जिसमें टिक टिक आवाज आती थी। काम करते करते वो घड़ी गिर गई। घर पर आए, थोड़ा ढूंढा, वहां नहीं मिली। घर पर आकर लड़का था, बोला घड़ी थी गिर गई। लड़के ने कहा मैं जाता हूं ढूंढ के लाता हूं। लड़का गया खेत में, साइलेंस में खड़ा हो गया। अप्रोक्सीमेट जो पिताजी ने बताया तो उस एरिया में शान से खड़ा हो गया। जैसे ही साइलेंस में खड़ा हो गया, टिक टिक की आवाज आने लगी और घड़ी मिल गई। वो अनद शब्द, वो परमधाम का लिंक, आवाज, आत्मा का आवाज आ रहा है, हम सभी में है। पर क्योंकि हमने इतनी कवरिंग कर रखी है, इतना माइंड भाग रहा है, संकल्प भाग रहे हैं, वो आवाज सुन नहीं पा रहे हैं। इसीलिए जैसे ही उसमें टिक जाते हैं, वो साउंड आता जाता है, और जैसे ही उससे हमारा फ्यूजन हो जाता है, वो संकल्प उठने लगते हैं जो होने वाला है। अब मैं और डीप जा रहा हूं, पीएचडी में जा रहा हूं। बाबा ने एक मुरली में कहा था कि धीरे धीरे तुम्हारी अवस्था ऐसी हो जाएगी, जैसे ही उस अनादि स्वरूप में टिकेंगे, अनुभव करेंगे, तुम्हारे को पता लग जाएगा कि क्या होने वाला है। जिसको बाबा ने कहा, एक अलग से ही टॉपिक था, कैचिंग पावर। और मैं कहूं इस समय का सबसे बड़ी डिमांड क्या है? कैचिंग पावर। प्रॉब्लम आए उसको ठीक करूं, समय गया, पहले से ही मुझे पता लग जाए ये होने वाला है तो मेरा समय बचेगा, और वो तब होगा जब मैं उस अनादि स्वरूप के स्मृति में टिकूंगा, स्वरूप की स्मृति में टिकूंगा। जैसे ही ब्रह्मा बाबा को स्मृति आ गई, विनाश होने वाला है, स्वर्ग का कंस्ट्रक्शन है, बाबा ने साक्षात्कार कराया, तो उन्होंने अपना पुराना पूरा जो भी छोड़कर नई सृष्टि की स्थापना में लग गए। स्मृतियों का अर्थ ही है कि हमारा कॉन्शियसनेस एक्टिवेट हो गया। जो मैंने कहा कि ये जिंदगी लाइफ है ही डांस, इटर्नल डांस, स्मृतियों का, कॉन्शियसनेस का। और जैसे ही वो आती है तो हमारे डर घबराहट खत्म हो जाते हैं। फिर लगने लगता वो हमारे साथ ही चल रहा है। अब वो टाइम भी गया कि मैं जाऊं, मैं आत्मा में टिकूं, फिर ऊपर जाऊं, फिर नीचे आऊं, फिर उसमें टिककर पूरे विश्व को दूं। अब वो भी टाइम, उससे भी अब लेटेस्ट टाइम आ गया। वो माता भी कह रही थी कि मैं बैठती हूं, फिर ऊपर जाती हूं, फिर उस आत्मा को देती हूं, तो हेवी हो जाती हूं। फिर मैं चिंतन कर रहा था, मंथन कर रहा था, क्योंकि मेरा एक टॉपिक था कैचिंग पावर। मेरे को बड़ा अच्छा लगता है, बाहर वालों को भी बड़ा अच्छा लगता है कैचिंग पावर। चाहे उनमें ज्ञान नहीं है पर उन्होंने, काफी ने सिलेक्ट किया, एक आईआईटी कॉलेज ने सिलेक्ट किया था कैचिंग पावर, ये क्या है बताइए क्या है, क्योंकि मुरलियों में आ गया है। पहले हाथ उठाओ, हाथ उठाओ, हाथ उठाओ, ताली बजाओ। फिर कहो, मैं अनादि स्वरूप आत्मा हूं। खेल वही है कि मन बुद्धि संस्कार ये गेम खेल रही है। जो सूक्ष्म इंद्रियां हैं वो मेजर गेम खेलती हैं। और वो ही कैच करती हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है बुद्धि, जो पूरा गेम को मैनेज करती है। मन तो एक ऑटोमेटिक संकल्पों का चलता रहता है, माइंड क्रिएट करता रहता है, संकल्प आते रहते हैं, संकल्प नए आते हैं, पुराने आते हैं, संस्कारों से, हमारे मेमोरी डाटा से, जो मेमोरी हमारे अंदर गई है। फिर से हाथ उठाएं। और कहें, मैं परमात्मा की सिलेक्टेड आत्मा हूं, मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। मन और बुद्धि संस्कार ये तीनों गेम खेलते रहते हैं। संस्कार में जो भी गया हुआ है, मेमोरी डाटा, वो ब्रेन के द्वारा शरीर में भी आता है, जिसको हम कहते हैं संस्कार, जिसको टेक्निकल लैंग्वेज में कहें सबकॉन्शियस माइंड। बुद्धि कॉन्शियस माइंड, चेतन मन का काम करती है। जो हमारे अंदर गया हुआ है, चाहे इस जन्म में, एक डॉक्टर ने तो यहां तक बताया कि हमारी प्रोग्रामिंग बचपन से मां के पेट में सातवें महीने से चालू हो जाती है करीब, और सात साल नौ साल तक चलती रहती है। और वही प्रोग्रामिंग हमारे बड़े होने पर भी ज्यादा वही काम करती है, क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस 90% है, मेजर है। हमारा कॉन्शियस माइंड चेतन मन 10% है। कॉन्शियस माइंड यानी जो हमें इस समय मुझे कह रहा है कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, मैं कहां पर हूं। सब कॉन्शियस में जो मेमोरी गया हुआ है, ज्यादातर अगर कॉन्शियस माइंड का काम मैं नहीं कर रहा हूं तो सब कॉन्शियस में चला जाऊंगा, स्लिप हो जाऊंगा। और मेजर दिन में हम लोग 80-90% हम काम सब कॉन्शियस माइंड से करते हैं, जिसको कहते हैं हैबिट्स। सब कॉन्शियस माइंड का अर्थ है हैबिट वाला माइंड। जो चीज हमने बार बार करी है, हैबिट बना दी है, वो चली जाती है। इसीलिए जो हमारे विकार हैं, 5 विकार हैं जो हमारे 63 जन्मों से चल रहे थे, वो हैबिट बनाकर अंदर पड़े हुए हैं। इसीलिए संस्कारों को निकालना भी, खत्म करना भी बड़ा डिफिकल्ट जॉब रहता है। जबकि मेरे को ज्ञान है, मैं ये हूं, 7 गुण है, पर वो स्लिप हो जाता है क्योंकि ये जल्दी एक्टिवेट हो जाता है। अभी कल का ही मैं देख रहा था टीवी पर, एक कार वाला और स्कूटर वाले की टक्कर हुई और दोनों झगड़ा करने लगे, करते गए, बोलते गए, झगड़ा करते गए। अल्टीमेटली स्कूटर वाले ने कार वाले को ऐसे धक्का दिया, तो बस आ रही थी और बस से वो हिट हुआ और उसकी डेथ हुई, जबकि वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, दोस्त है। अब ये देखो, एक यंग पर्सन एक छोटी सी घटना से चला गया, क्या हुआ? जबकि दोनों समझदार होंगे, पर एक्टिवेट क्या हो गया? सब कॉन्शियस माइंड, जिसको कहते हैं इमोशनल माइंड है। क्यों ऐसा किया? ऐसा किया, अभी भी हुआ था, एक कार और पीछे गाड़ी आ रही थी, गाड़ी वाले की पीछे वाले की गलती थी, वो एकदम लगा दिया उसके बोनेट पे लगा, चलो दोनों मामला। वो बीच एक और था, वो जो टोल नाके वाला, उसने आगे कर दिया। और एक छोटी सी घटना रिएक्ट कर देती है, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड में प्रोग्रामिंग किया हुआ है इमोशनल माइंड। जनरली हमारे थॉट्स, संकल्प हमारी भावनाओं को कंट्रोल करते हैं बेसिकली, पर आजकल क्या हो गया है, हमारी भावनाएं संकल्प को कंट्रोल कर रही है। हमारे अंदर थिंकिंग माइंड है, सोचने वाला ब्रेन, और हमारे अंदर इमोशनल ब्रेन है, लोअर ब्रेन है। आजकल लोग लोअर ब्रेन का ज्यादा यूज कर रहे हैं, ऊपर वाला हायर ब्रेन का यूज कम हो गया, इसलिए प्रॉब्लम आ रहे हैं। और इमोशनल ब्रेन जल्दी एक्टिव हो जाता है, रिएक्ट करता है, इम्पल्सिव है। और पूरा मेडिटेशन हमारा उस इम्पल्सिव माइंड को, इम्पल्सिव ब्रेन को कैसे ठीक रखना है। नॉर्मली दोनों का बैलेंस होना चाहिए, थिंकिंग माइंड और इमोशनल माइंड का बैलेंस होना चाहिए। कहां उसको यूज करना है भावना वाला, कहां सोचने वाला, वो हमारे ऊपर है, बुद्धि दी है, पर हो क्या रहा है, लोअर ज्यादा काम कर रहा है, क्योंकि लोग टेक्निकल इतने हो गए हैं, हर जगह व्हाट्सएप। मैंने देखा हमारे भाई बहने भी क्लास के वो ऐसे ही घूम रहे हैं, अब आगे चलकर ये गर्दन के भी प्रॉब्लम आ जाएंगे, आगे चलकर ऐसा हो सकता है उनको कोई हेल्प की जरूरत रहेगी, हेल्प वाला उनको हाथ पकड़ के सड़क क्रॉस कराएगा और वो ऐसे ही करता रहेगा, क्योंकि हम टेक्नोलॉजी पर इतना डिपेंडेंट हो गए। साधनों का यूज करना है, पर अपनी साधना को खोना नहीं। टेक्नोलॉजी अच्छी है, पर उसमें इतना हम ब्लाइंडली नहीं खो जाए, वो हमें टेक ओवर कर रही है। जैसे बाबा ने कहा, मन मेरा है कि मैं मन हूं, ये फर्क है। तो उसके कारण इमोशनल ब्रेन एक्टिव हो गया, तो हलचल ज्यादा है, हलचल ज्यादा है, तो साइलेंट जो होना चाहिए वो कम हो गया। इसकी प्रैक्टिस हमें करते रहना पड़ेगी। और कैसी प्रैक्टिस करना है, छोटी छोटी प्रैक्टिस करना। मेरे को बहुत अच्छा याद आता है दादी गुलजार जी का, हमेशा बाबा के एक दिन पहले शाम को क्लास कराती हैं, उस समय कराती थी इवनिंग क्लास 7:30 की, और मैं घूमते घूमते वो क्लास को हमेशा सुना। और उस क्लास में बहुत सिंपल तरीके दादी बताती, जैसे पानी पीना है, खाना खाना है, 1 सेकंड लगेगा, आत्मा गाड़ी को चला रहे हैं तो 1 सेकंड रुक जाओ गाड़ी में, आत्मा शांत स्वरूप गाड़ी चला रही हूं, कर्म कर रहे हैं पर हमारी बुद्धि उस घर में लगी रहे, तब हमारा योग पावरफुल होता जाएगा। खाली बैठकर योग करना वो तो करो, मैं ये नहीं कह रहा हूं, पर वो आपको सफिशिएंट पावर कितना देगा, क्योंकि मेरे को 8 घंटे इसकी प्रोग्रामिंग करना है, और 8 घंटे प्रोग्रामिंग कब होगी, जब मैं दिन भर अपने ऊपर अटेंशन दूंगा कि हर कर्म करने के पहले वो होए, तब मैं चेतन रहूंगा, और कुछ गड़बड़ होगी तो मैं अपने को साक्षी कर लूंगा, क्योंकि साक्षी त्रिकालदर्शी ये दोनों काम करते रहते हैं। आज के समय में कैचिंग पावर के बाद त्रिकालदर्शी और साक्षी होना बहुत जरूरी है। अगर हम इमोशनल ट्रैप में फंस गए तो गए, जो कई जगह देखा गया, फंस गए और गए। हमें ट्रैप में फंसना नहीं है, हमें उस समय साक्षी होकर उस गेम को, उस नाटक को देखना है, चाहे वो दूध गिरा है, बर्तन टूटा है, साक्षी हो गया। क्यों क्या मैं नहीं जाए, टूटा है तो टूटा है। उस ट्रैप में फंस गए, इसने क्यों कहा, ऐसा क्या था, गुस्से में आ गए अपन भी, रिएक्ट कर गए, तो शरीर भी बीमार और वो उस समय माइंड की हालत भी खराब। इसलिए अपनी स्वस्थिति को, स्मृति को पावरफुल बनाना, मैं कहूंगा सबसे ज्यादा जरूरत इस समय, और कुछ नहीं कर सकते, अपनी खुशी को गायब नहीं करना है, अपनी स्वस्थिति और स्मृति को ठीक रखना है, और साक्षी होकर गेम को देखना है। और अल्टीमेटली ये गेम है ही क्या, अब लास्ट में अगर देखें ये गेम है क्या, गेम हमारा है ही नहीं, वो ऊपर वाला करा रहा है, कठपुतलियां बनकर हम खेल रहे हैं। पर अब होता क्या, मैं सोचता हूं मैं कर रहा हूं, मैं करा रहा हूं, तो वो पकड़ने की कोशिश करते हैं, जबकि देखा अब इस 9 महीने में कई लोग फटाफट क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कितनी वो की, 1 सेकंड में गेम खत्म। तो इसीलिए साक्षी होकर देखना है कि ये गेम मेरा नहीं है, वो बाबा का है, बाबा करा रहा है, जितना करा रहा है, जितना कर सकता हूं कर कर, पर अपना संतुलन मत खो, संतुलन मत खो। मेरे साथ एक बार एक भाई चला, ट्रेन में जा रहे थे, उसको बड़ा शोक, मैं दूसरे डब्बे में था, वो दूसरे डब्बे में, उसको बड़ा शोक था सेवा करने का, वो 1-3-4-5 डब्बे करते करते वापस आया तो सामान गायब। वो हम नहीं करें, बाबा ने जरूर कहा सेवा करो, ट्रेन में करो, पर कैसे करो, जो बाबा ने कहा नब्ज देखकर, पल्स देखकर, समय देखकर, स्थिति को देखकर, जगह को देखकर करना है। और इसीलिए जितना बैलेंस रखेंगे यहां का साइलेंस मेंटेन रहेगा। तो छोटी छोटी चीजों में पहले उसका यूज करो, खुद पर यूज करो, खुद को कोई तकलीफ है, बीमारी है, वहां साइलेंस का यूज करो। जब तक मेरा खुद का अनुभव नहीं होगा, दूसरों को नहीं करा सकता। खुद का एक्सपेरिमेंट करो। और ये 9 महीनों में कई भाई बहनों ने बहुत अच्छा किया, बोला अब हमें पता लगा ज्ञान का डीपनेस। क्योंकि हम सभी 0 लेवल पे थे, ये 9 महीने में क्या हुआ, सब आत्माएं 0 लेवल पे थी, चाहे कोई बड़ी लेवल, कोई बड़ा, कोई छोटा, सब 0 लेवल पर। कोई बाहर नहीं निकल सकता, ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता, भाग नहीं सकता, सब 0 लेवल पर। अब इस 0 लेवल पर जिसने संकल्पों की, वाइब्रेशन की, खुद की स्थिति की सेवा कर ली, वो आगे बढ़ गया। इसीलिए बाबा ने कहा कोई भी नंबर आगे ले सकता, पीछे वाला भी आगे ले सकता है। और इसीलिए बाबा ने कहा मैं इधर वालों को नहीं देख रहा हूं, सबको देख रहा हूं, जो नहीं आए हैं उनको भी देख रहा हूं। तो सब 0 लेवल पे थे, और जिन्होंने अपने को यूज कर लिया कि इस समय क्या करना है, वो आगे बढ़ गए, और जो उसी में फंसे रहे वो वहीं रहे। तो इसीलिए बाबा अलग अलग समय पर अलग अलग चैलेंजेस देता है, अलग अलग प्रॉब्लम देता है, और उन समस्याओं का समाधान करना हमें आ जाना चाहिए। तो जो आने वाले समय में जरूरत होगी नेक्स्ट की, समस्याओं का समाधान कैसे करते हो, कारण को निवारण कैसे करते हो। प्रॉब्लम आते रहेंगे, अभी एक प्रॉब्लम आया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। अपन सोचे ये वाला अभी ठीक हो गया, वैक्सीनेशन आ गया, सब ठीक हो गया, ऐसा कुछ नहीं, प्रॉब्लम तो आते रहेंगे, वो तो एक के बाद दूसरा आएगा। पर हमारा काम क्या है, उस साइलेंस में चलते रहना और प्रॉब्लम को ठीक करते रहना। और अब ऐसा आएगा कि हमें अपने लिए समय नहीं मिलेगा, देते रहना पड़ेगा। मैं सोचूं मैं योग कर लूं, प्रॉब्लम इतने बढ़ेंगे कि हमारा काम ही होगा देते रहना। और वो तभी होगा जब हम साइलेंस में बैठकर अपने शरीर को ठीक रख रहे हैं। जैसे जैसे उस अनादि साइलेंस में रहेंगे, शरीर भी ठीक रहेगा। बाबा ने एक मुरली में कहा जब फरिश्तेपन की प्रैक्टिस करते हो, जितना हम फरिश्ते की प्रैक्टिस करते हैं, लाइट की, सूक्ष्म शरीर की, खाने की भी जरूरत नहीं पड़ती, केवल स्मेल से खाना पेट भर जाएगा। इसीलिए बाबा ने प्रैक्टिस कराई थी दादियों को छाछ और डोडे की, कि सब होते हुए भी तुम्हें ये खाना है। तो जो चीजों पर हमारा मोह था, उससे बाबा ने उनको अलग करके प्रैक्टिस कराई। इसीलिए बाबा ने उनको कहा था कि अगली दिवाली भी नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी, कि पकड़ नहीं ले, क्योंकि हम यहां टेम्पररी हैं। मोह क्यों होता है, एक बड़ा क्वेश्चन ये आया था, मोह होता क्यों है। मोह इसलिए होता है, एक हम लोग पकड़ लेते हैं, हम सोचते हैं हम परमानेंट हैं, परमानेंट कोई नहीं, सब मेहमान हैं, टेम्पररी आए हैं इस शरीर में पार्ट प्ले करने और फिर जाना। जो रोल दिया गया है उसको अच्छी तरह प्ले करो, रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको अच्छी तरह दो, पर उसको पकड़ो नहीं कि ये मेरी है। जहां मैंपन आया वहां गए, और बाबा ने कहा ये तुम्हारा है ही नहीं। दादियों से यही सीखा कि दादियों ने कभी नहीं कहा ये मेरा है, हमने उसको मैं कर लिया, तो तब इसलिए अलग अलग प्रॉब्लम में फंसते गए। तो अलग अलग समय पर अलग अलग प्रैक्टिस करो, सब कुछ है मैं कितना ले रहा हूं, साधनों पर डिपेंड तो नहीं हो गया। वीक में एक बार दो बार साधन यूज नहीं करो। जैसे आजकल अच्छा हो गया, नीचे हॉल में घुसते हैं, 8 महीने हो गए, मोबाइल बाहर ही रखवा देते हैं। तो मैं एक दो बार ले गया, फिर मैंने कहा फायदा क्या यहां लाना, उसको देना और वो होगा। अब फिर बंद ही कर दिया, फिर बढ़िया मजा, फोन कमरे पे ही पड़ा रहे हो जाओ। तो ये माइंड तो खाली रहा। तो बाबा ने कितना अच्छा कर दिया वो टेक्निक्स की, अब उससे डिटैचमेंट होना इजी हो गया। कई लोग कहते हैं मेरे को सिखाया फ्लाइट मोड पर रखना, आप जब वो अभी लेक्चर था एक जगह, वो बहन ने कहा फ्लाइट मोड पर, मैंने कहा काय का फ्लाइट मोड, बंद ही कर दो उसको, बंद अभी भी बंद कर दिया। मेरे बिना दुनिया चलती है ये जब आ गया, तो वो अनादि आत्मा जहां कोई एक्टिविटी नहीं, साइलेंस वर्ल्ड है, होता रहेगा, क्योंकि वो मेरा नेचुरल संस्कार है। अब कोई क्वेश्चन है तो पूछे, इसकी गहराई बहुत है, मैं क्योंकि टाइम को देख रहा था। हाँ, कोई क्वेश्चन है तो पूछे। इसी टॉपिक पर पूछे, क्योंकि अनवांटेड टॉपिक पे न पूछे। फिलोसॉफी का अंत नहीं फिर। जैसे मैंने बताया, पानी पी रहे हैं, खाना बना रहे हैं, खाना खा रहे हैं, जा रहे हैं, हर जगह थोड़ा एक मिनट आधा मिनट खुद को दे दो। जो दादी गुलजार जी के मेरे को बड़ा अच्छा लगता, क्योंकि वो हमेशा सिंपल टेक्निक्स उन्होंने बताई हैं, अभी तक मेरे अंदर उनका डीपली जाता है। कोई ज्ञान को कॉम्प्लिकेट नहीं करती, ज्ञान को सिंपल करती हैं, और उन्हीं से सीखा मैंने कि ज्ञान को सिंपल तरीके से यूज करो, उसका स्वरूप करो, उसको अप्लाई करो, चाहे एक पॉइंट ले लिया मुरली में से, उसको यूज करो कि आज के दिन मैंने यूज किया, और रात को फिर चेक करो कि मैंने यूज किया, कहां गड़बड़ की, क्यों हुआ, क्यों गलत हुआ, उसको ठीक करो। अपन सब लोग परफेक्ट नहीं है, परफेक्ट धीरे धीरे बनेंगे, कर्मातीत बनेंगे, पर हम उसके कारण टेंशन में भी नहीं आए, स्ट्रेस में भी नहीं आए, चेहरा वो नहीं हो जाए टेंशन का। जो बाबा ने कहा कि जितना आपका चेहरा सेवा करेगा, क्या बोला, आपका ये चेहरा सेवा करेगा, कुछ सेवा नहीं करेगा, कितना अच्छा बोला। तो चेहरे को देखो, अरे मैं स्ट्रेस में तो नहीं हूँ, योग लगाते टेंशन में तो नहीं, अरे इजी। जितना हमारा चेहरा चमकेगा दमकेगा, उतना लोग आएंगे, वो सेवा करेगा। ज्ञान की एक लिमिट है, बोलने की एक लिमिट है, पर ये कंटिन्यूस मेरा प्रोजेक्टर है, इस प्रोजेक्टर को मैं ले जा रहा हूं, वाइब्रेशन है, वही अल्टीमेट सेवा करेंगे आने वाले समय पर। बाबा ने कहा हर घर वो बन जाएगा, सेंटर बन जाएगा। क्यों? क्योंकि वाइब्रेशन जो भी स्टूडेंट है बाबा के, वो भेजेंगे। तो क्या होगा क्या नहीं होगा, मैं उसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, पर बहुत परिवर्तन आता जा रहा है, एक नया गेम प्लान चालू हो गया। तो छोटी छोटी चीजों में लगाओ। बात कर रहे हो तो किसी से बात करते आप क्या देख रहे हो, वो प्रैक्टिस करो, जहां वो है वो उसको अप्लाई करो। शादी पे गए, काम पर गए, उस समय मेरी वो प्रैक्टिस है कि नहीं, तो वो जो 7 घंटे 8 घंटे की प्रैक्टिस है, जब बैठेंगे योग में तो तब वो काम में आएगी। खाली बैठने से नहीं होता, मेरा है कि दिन भर मैंने अपनी दिनचर्या को लौकिक से अलौकिक में कन्वर्ट किया। जो बाबा ने कहा उस मुरली में, मैं फरिश्ता इस शरीर का आधार ले रहा हूं, काम किया छुट्टी, पहले कहते थे मैं शरीर में अब फरिश्ता बन रहा हूँ, ऊपर जा रहा हूँ, परमधाम जा रहा हूँ। अब बाबा ने उस मुरली में क्या कहा, परमधाम भी यही है, बाबा भी यही है, कंपेनियन को बनाकर साथ में चलो और परमधाम के वाइब्रेशन क्रिएट करो। वहां जाओगे करोगे ये नहीं, समय आएगा, परिस्थिति आएगी, एक सेकंड की आएगी, उस समय मैं सोचूं ऊपर जाऊं ये करूं, यही है। मैंने प्रैक्टिस इतनी कर ली कि सूक्ष्म वतन यही है, परमधाम भी यही है, उसको लेकर चल रहा हूं, अनादि और आदि को और सूक्ष्म वतन को लेकर चल रहा हूं। मैं हूं ही देवता, हूं ही शरीर नहीं हूं। अब वो आउटडेटेड हो गया, शरीर में आया, काम किया और फिर गया, शरीर केवल काम करने के लिए कर रहा हूं, बाकी तो गया। आना जाना हमारा इतना नेचुरल हो जाए जो दादी का, ब्रह्मा बाबा का था, तो वो नेचुरल प्रैक्टिस हमें हेल्प करेगी। लास्ट क्वेश्चन, बाबा की हर मुरली में ऑलमोस्ट आया, कई भट्टियों में आया संस्कारों का परिवर्तन। अब संस्कार जो होते हैं पास्ट के, वो होते हैं जो मैंने कहा हमारे मेमोरी डाटा में, जिसको हम कहते हैं सबकॉन्शियस में। अब हमें करना क्या है कि कॉन्शियसली चेतन मन से नया प्रोग्राम डालते रहना। अगर मेरे में गुस्से का है तो मैं कौन सा प्रोग्राम डालूंगा अंदर, शांति का, प्रेम का। तो मैं अपने को क्या प्रोग्राम दूंगा जब योग में बैठूंगा, इसको मैं रिवाइज और रियलाइज करूंगा, चाहे शांत स्वरूप का दो, प्रेम स्वरूप का दो, 3 महीने तक डालते रहूंगा। कोई भी नया प्रोग्राम ब्रेन 3 महीने में लेता है, एक दिन में नहीं होगा। 3 महीने तक वही डालते रहूंगा, मैं शांत स्वरूप हूं, शांत स्वरूप हूं, जब मौका मिला शांत स्वरूप हूं। तो नया प्रोग्राम अंदर चला गया तो पुराना प्रोग्राम निकलेगा, पर अब नया प्रोग्राम क्या कहेगा, तू शांत स्वरूप है। मैं अपना ही देता हूं, मैं जब आपको क्लियर कर देता हूं, मैं जब इंडिया आया तो मेरे को मेरा प्रोग्राम था परफेक्शन का, हर चीज ठीक होना चाहिए, टाइम पर होना चाहिए, ये होना चाहिए, कार में बैठे आधे घंटे में तो आधे घंटे में पहुंच जाना चाहिए, जैसे वहां था, वहां सब ऐसा चलता था। अब इंडिया आया, बैठा रास्ते में, ट्रैफिक प्रॉब्लम, साइकिल, मोटर, गाय, बैल, सब, बड़ा गुस्सा आता था, लोगों में अकल नहीं है, गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही, पुलिस वाला कुछ नहीं कर रहा है, जहां ट्रैफिक का वो बैरियर लगा है गाय खड़ी मुस्कुरा रही है। तो मैंने देखा 3 महीने में कुछ नहीं हुआ, मेरे को ही तकलीफ हो रही है लोगों में। फिर मैंने अपने में नया प्रोग्राम डाला, इंडिया इज ए वेरी गुड कंट्री, ब्यूटिफुल कंट्री, डालता गया डालता गया। मैंने देखा 3 महीने बाद जब बैठा, गाय बैल मोटर बाइक, सबसे ज्यादा खतरनाक वो रहते ना, यूं जाएगा यूं जाएगा, तो मैंने कहा क्या बढ़िया जा रहा है यार, वेरी गुड वेरी गुड, गाय खड़ी मुस्कुरा रही है, वेरी गुड, कितना अच्छा काम कर रहे हो आप, ट्रैफिक को स्लो कर रहे हो, पुलिस का काम कर रहे हो, बिना सैलरी खड़े मुस्कुरा रहे हो, तो मुस्कुराहट आ जाती थी। तो अब वो जो पुराना प्रोग्राम था खत्म हो गया, अब जैसे ही बैठता हूं, गुड गुड। तो जो अंदर एड्रिनल निकलता था, स्ट्रेस का हार्मोन निकलता था, अब नहीं निकला, गुड वेरी गुड, बहुत अच्छे। वो साक्षी होना प्रैक्टिकल आ गया, नहीं तो बड़ा डिफिकल्ट था, साक्षी कैसे हो, लोग गड़बड़ कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। फिर जो बाबा का पार्ट आ गया, हर आत्मा अलग है, यूनिक है, डिफरेंट है, तू काय को फंस रहा है, तू काय का गेम उसने खेला है, वो आत्मा को उसने पार्ट दिया है, उसका पार्ट ही ऐसा है, मजा आ गया। फिर तो गिर गया कुछ, टूटा है, ठीक है गिर गया, कल पहले भी गिरा था ना, तो अब क्या करें। तो उसको स्वरूप में लाना है। चलिए खड़े हो जाएं, टाइम हो गया।